ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯ ಮುದಿರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೀರ್ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ. ತೋ ಆಜ್ ಇಸ್ 29 ಮಾರ್ಚ್ ಕೋ ಹಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೇ ಚೌಥೇ ಸ್ಕಂದ ಸೇ ಪಡ್ ರಹೇ ಹೈನ್ ಅಧ್ಯಾಯ 24. ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ ನಾಮ ಶಿವಜಿ ದ್ವಾರಾ ಗೈ ಸ್ತುತಿ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಯಾನಿ ರುದ್ರಗೀತ. ಶ್ಲೋಕ ಕ್ರಮಾಂಕ 59. ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಇಸ್ ಸಭಾ ಮೇ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ. ನ ಯಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಬಹಿರರ್ಥ ವಿಭ್ರಮಂ ತಮೋ ಗುಹಾಯಾಂ ಚ ವಿಶುದ್ಧಮಾವಿಶತ್. ಯತ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಾನುಗೃಹಿತಂ ಅಜನ್ಮಂಜಸಾ ಮುನಿರ್ವಿಚಷ್ಟೇ ನನು ತತ್ರ ತೇ ಗತಿಂ ನ ಯಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಬಹಿರರ್ಥ ವಿಭ್ರಮಂ ತಮೋ ಗುಹಾಯಾಂ ಚ ವಿಶುದ್ಧಮಾವಿಶತ್. ಯದ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಾನುಗೃಹಿತಂ ಮಂಜಸಾ ಮುನಿರ್ವಿಚಷ್ಟೇ ನನು ತತ್ರ ತೇ ಗತಿಂ ನ ಯಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಬಹಿರರ್ಥ ವಿಭ್ರಮಂ ತಮೋ ಗುಹಾಯಾಂ ಚ ವಿಶುದ್ಧಮಾವಿಶತ್. ಯದ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಾನುಗೃಹಿತ ಮಂಜಸಾ ಮುನಿರ್ವಿಚಷ್ಟೇ ನನು ತತ್ರ ತೇ ಗತಿಂ. ನ ಯಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಬಹಿರರ್ಥ ವಿಭ್ರಮಂ ನಮೋ ಗುಹಾಯಾಂ ಚ ವಿಶುದ್ಧಮಾವಿಶದ್. ಯತ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಾನುಗೃಹೀತ ಮಂಜಸಾ ಮುನಿರ್ವಿಚಷ್ಟೇ ನನು ತತ್ರ ತೇ ಗತಿಂ ನ ಯಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಬಹಿರರ್ಥ ವಿಭ್ರಮಂ ತಮೋ ಗುಹಾಯಾಂ ಚ ವಿಶುದ್ಧಮಾವಿಶತ್. ಯದ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಾನುಗೃಹಿತ ಮಂಜಸಾ ಮುನಿರ್ವಿಚಷ್ಟೇ ನನು ತತ್ರ ತೇ ಗತಿಂ. ಮಾತಾಜೀಸ್ ನ ಯಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಬಹಿರರ್ಥ ವಿಭ್ರಮಂ ತಮೋ ಗುಹಾಯಾಂ ಚ ವಿಶುದ್ಧಮಾವಿಶತ್. ಯದ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಾನುಗೃಹಿತ ಮಂಜಸಾ मुनिर विचष्टे ननु तत्र ते गतिम मतजिस तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत यद् भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमम् विभ्रमम् गृहीत मञ्जसा न गृहीत मञ्जसा मुनिर विचष्टे तन तत्र ते गति हरि बोल जय हो जय हो जय हो न कभी नहीं यस्य जिसका चित्तम हृदय बही बाहरी अर्थ रुचि विभ्रमम मोहित तमह अंधकार गुहायाम कूप में या गुफा में च भी विशुद्धम शुद्ध अविशत प्रवेश किया यथ जो भक्ति योग भक्ति अनुग्रहितम कृपा पात्र अंजसा प्रसन्नता पूर्वक मुनि ही विचारवान विचष्टे देखता है ननु फिर भी तत्र वहाँ ते तुम्हारे गतिम कार्यकलाप अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप जैसे माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार समस्त भौतिक कल्मश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम यश स्वरूप और कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक समझ सकता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम 3.25.25 में कहा गया है सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जो क्षणादाश्व अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भगवान के दिव्य नाम यश गुण तथा कार्य समझ में आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कोय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 54वां श्लोक। केवल शुद्ध भक्त की संगति करने से ही मनुष्य कृष्ण चेतना में आश्चर्यजनक रूप से अग्रेसर होता है। साधु संग का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण चेतना भक्ति में लगे रहना और कृष्ण के लिए ही कार्य करना। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन पर बल दिया है चेतो दर्पण मार्जनम। श्री कृष्ण के नाम जप से हृदय रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और भक्त को बाह्य बातों में अरुचि होने लगती है। जब मनुष्य भगवान की माया से वश में रहता है तो उसका हृदय अशुद्ध रहता है और जब हृदय शुद्ध नहीं रहता तो उसे ये नहीं दिखता कि वस्तुएं भगवान से किस प्रकार संबंधित हैं। इदम हि विष्णुम भगवान निवेतरः भागवतम 1 स्कंद 5वां अध्याय 20वां श्लोक। जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए ये सारा दृश्य जगत भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। किंतु जिसका हृदय दूषित होता है उसको वस्तुएं दूसरी तरह दिखाई पड़ती है। अतः सत्संग से ही मनुष्य का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। जिसका हृदय शुद्ध होता है वो कभी भी माया द्वारा आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि माया प्रत्येक जीव को प्रकृति पर अधिकार जताने के लिए आकर्षित करती रहती है। जब भक्त श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के द्वारा भक्ति करता रहता है तो उसका हृदय शुद्ध हृदय विचलित नहीं होता। भक्ति करने की कुल 9 प्रक्रिया हैं, विधियां हैं। शुद्ध मानस वाला भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। भक्ति योग के महामंत्र को जप करते हुए, 10 अपराधों से तथा श्री विग्रह की पूजा करते हुए 64 अपराधों से हमको बचना चाहिए। जब भक्त इन समस्त विधि विधानों का पालन करता है तो भक्ति देवी उस पर परम प्रसन्न हो जाती है, तब वो किसी बाहरी वस्तु से विचलित नहीं होता। भक्त को मुनि भी कहते हैं। मुनि का अर्थ है विचारवान। भक्त उतना ही विचारवान होता है जितना एक अभक्त जितना कल्पनाशील होता है उतना ही विचारवान भक्त होता है। अभक्त की कल्पना अशुद्ध रहती है किंतु भक्त के विचार शुद्ध होते हैं। कपिल तथा सुखदेव गोस्वामी को भी मुनि कहलाते हैं, लेकिन व्यासदेव को महामुनि कहा गया है। भक्त को तभी मुनि कहते हैं जब भगवान को वो शुद्धता पूर्वक समझ सके। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब मनुष्य का हृदय भक्तों के सत्संग से था भगवान के कीर्तन तथा पूजा करते समय अपराधों से बचने से शुद्ध हो जाता है तो भगवान का दिव्य नाम रूप तथा कार्यकलाप उनके हृदय में प्रकट होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सबका बहुत कृतज्ञ हूँ आप सभा सवेरे के सभा में यहाँ पर उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत में ये जो प्रसंग चल रहा है सब जानते ही हैं कि प्रचेतस जो प्रचीनी भरिषत के पुत्र हैं उनको शिवजी यहाँ पर सुंदर भगवान का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के गौरव में सुंदर गीत गा रहे हैं। आप लोगों ने भगवान के सुंदरता के विषय में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक सुने। इतना विस्तार में भगवान के हर एक अंग का शिवजी इतना प्रेम से वर्णन करते हैं कि पढ़ने वाले को समझ में आता है कि शिवजी के मन में भगवान के लिए कितना प्रेम है, इतना भगवान को वो सराहते हैं। हाउ मच ही अप्रिशिएट्स श्री कृष्ण। और जिस तरह से कोई प्रेमी भक्त अगर भगवान के हर एक अंगों का विस्तार में प्रेम से अर्पण वर्णन करते रहता है तो सुनने वाले के मन में 100 में से एक विचार तो चिपक जाता ही है मन में। कहीं बांसुरी पर मन लगे, कहीं चरणों के नूपुर पर आनंद आ जाए। और जब शुद्ध भक्त ऐसा सुंदर वर्णन करते हैं तो उसमें से एक भी वस्तु अगर हमारे हृदय में प्रवेश करती है और उनको याद रहती है तो श्रीमद् भागवत का ये पूरा जो उद्देश्य है वो सफल हो जाता है। इस अध्याय का उद्देश्य सफल हो जाता है, शिवजी का उद्देश्य सफल हो जाता है, सब गुरुजनों का आचार्यों का उद्देश्य सफल हो जाता है। क्योंकि इसमें से एक ही प्राप्ति करनी है, भगवान पर चित्त लगाना। भगवान पर हमारा चित्त लग जाता है तो श्रीमद् भागवत भगवद गीता सब शास्त्र का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तो इसमें नाम रूप लीला धाम कार्य यश इसके बारे में वर्णन किया गया है। बहुत बड़ा विषय है, प्रभुपाद जी ने इसमें सत्संग इस विषय पर बहुत चर्चा की है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान, हम सब लोग नित्य रूप से भगवान के सेवक हैं और नित्य रूप से हम भगवान के शाश्वत प्रेम करने वाले जीव हैं। क्योंकि हम लोग अभी हमारी इंद्रियां अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, चेतना भी दूषित है, बुद्धि भी दूषित है, इसलिए हम लोग हमारे मूल स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त के संग में आते हैं तो ये सारे जो आवरण हैं धूल के, चेतो दर्पण मार्जन, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और कुछ बाहर से नई चीज़ अंदर इम्पोर्ट नहीं होती है, अंदर की चीज़ को प्रकट किया जाता है। जैसे हमारा कोयला होता है ना, क्या कहते हैं उसको, निखारा कहते हैं उसको, तो जब राख से ढका रहता है तो लगता है कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। जैसे हम हवा देते हैं तो अंदर की अग्नि प्रकट हो जाती है, नया कुछ पैदा नहीं होता है, जो अंदर है वही प्रकट हो जाता है, जो ढका हुआ है अभी वो प्रकट हो जाता है। तो साधना के बल से हम लोग कोई बाहर की चीज़ अंदर नहीं डाल रहे, साधना के बल से हम अंदर की चीज़ को जागरूक कर रहे हैं। और जब जागरूक होता है तो क्या होता है, भगवान का दिव्य नाम, भगवान की सुंदर लीला, भगवान का सुंदर स्वरूप, भगवान के सिव्य कार्यकलाप, लीलाएं प्रकट हो जाती है अपने आप स्वयं स्फूर्त। तो जब अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि कैसे मैं आपके भक्त को पहचानूं जो आपके सही भक्त हैं, तो वो कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यजन्तश्च दृढव्रतः, वो नित्य मेरे नाम में लगे रहते हैं, नित्य मेरे कीर्तन में, गुणगान में, लीलाओं का कीर्तन और श्रवण करने में, स्मरण करने में लगे रहते हैं। क्योंकि इनके हृदय में कोई अशुद्धि बची नहीं है और जो अंदर शुद्ध अवस्था है वो पूर्णतः प्रकट है और उससे वो पूर्णतः लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से उनके मन में वो जहाँ पर भी देखते हैं उनको श्री कृष्ण ही याद आती है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार हृदय शुद्ध हो गया किसी का तो उसको सारा जगत ऐसा अनुभव देता है कि ये सब कृष्ण ही है। और उस जिसका हृदय शुद्ध नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको वो अलग अलग लगता है, और खास करके लगता है कि हमारी ये भोग की वस्तु है, इसको मैं कैसे भोगूं, ये मुझे कैसा मिलेगा, ये मेरे लिए बना हुआ है, अब तक मेरे से दूर क्यों है, ये मुझसे अभी प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। जैसे रावण की मेंटेलिटी थी, हर सुंदर वस्तु मेरे भोग में होनी चाहिए, हर सुंदर वस्तु मेरे लिए बनाई गई है, ये एक अशुद्ध पापी हृदय का ये लक्षण है। जैसे गोपियाँ थी हमारी, वो गोपियाँ, उनको जमुना जी में हर पत्ते में, हर डाली में, हर शाखा में, हर फूल में, हर वस्तु में, हर श्रृंगार में कृष्ण ही शाम दिखाई देते थे, सब जगह उनको शाम का दर्शन होता था। तो ये अवस्था आज की स्थिति से उस तक प्राप्त करने के लिए बहुत बीच में यात्रा करनी पड़ती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की जो हमारी अवस्था है, इससे जो इस श्लोक में अवस्था का वर्णन किया गया, उस तक पहुंचने के लिए जो यात्रा है उसकी शुरुआत एक भक्त के संपर्क से होती है। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ, सब लोग याद कर सकते हैं कि हम यहाँ पर क्यों हैं, क्योंकि कभी जमाने में एक हमको एक भक्त मिला था, उसने हमको प्रेम की वजह से या मित्रता की वजह से या किसी और वजह से या कोई घटना की वजह से या कोई दुर्घटना हो गई या कोई ऐसा ही कोई प्रसंग था, शादी थी किसी का प्रसंग था, उधर मिल गया वो, और जो उसने चिंगारी जलाई उसकी वजह से आप आज हम यहाँ पर हैं। और उस दिन मिले थे तब से आज में क्या अवस्था हुआ है, सब कुछ बदली हो गया है। अरे खाने पीने की आदत बदली हो गई, कपड़े पहनने की आदत बदल हो गई, बोलने की स्टाइल बदल गई, विचार करने की पद्धति बदल गई, जीवन का उद्देश्य बदल गया, रास्ते बदल गए, सब बदल गया। तो एक भक्त कितना महत्वपूर्ण है इस दुनिया में, इस विश्व में जो सबसे दुर्लभ वस्तु है वो है भक्त। हमारे गोविंद दास जो संत हैं वो भजन लिखते हैं ना कि दुर्लभ मानव जन्म, उसमें भी दुर्लभ एक वस्तु है, दुर्लभ इतने मानव जीवन में एक दुर्लभ वस्तु है, वो है सत्संग, भक्तों का संग। एक भक्त मिलना, भगवान भगवीता में बताते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशु किंचित इतति सिद्ध ये, इतने हजारों लोगों में से एक भक्त मुझ पर श्रद्धा रखता है, ऐसे श्रद्धालु हजारों भक्तों में से एक मेरे मार्ग में गंभीर हो जाता है, ऐसे सीरियस भक्तों में से एक पवित्र हो जाता है पूर्णतः, और ऐसे पवित्र भक्तों में से एक हजारों में से एक मुझ तक पहुंचता है। हे अर्जुन, ये बहुत ही दुर्लभ है ऐसे भक्तों को मिलना। तो एक आम भक्तों को मिलना भी मुश्किल है, भाई वृंदावन में तो हमको सब जगह भक्ति भक्त दिखाई देते, ये परम भाग्य की बात है। लेकिन आप कहीं जाइए, बम्बई जाइए, दिल्ली जाइए, आपको कई दिनों तो भक्तों के दर्शन नहीं हो सकते। बाकी प्रदेश में तो बात छोड़ ही दीजिए आप, भाई प्रभुपाद की दया से चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ होता है, कई दिनों तक दर्शन नहीं होता है। आप विश्व का अगर रिकॉर्ड निकालेंगे कितनी जनसंख्या है, तो कुछ 650 करोड़ जनसंख्या आज की तारीख में। कितने भक्त हैं भगवान के सब संप्रदाय के मिलके? मैक्सिमम 2-3 करोड़ होंगे। उसमें से कितने सीरियस हैं, उसमें से कितने साक्षात्कार कर चुके हैं, उसमें से कौन शुद्ध भक्त हैं जिसके संपर्क में आते बाकी लोग भक्त बन जाते हैं? बहुत दुर्लभ है ये। लेकिन जब हम भक्तों के इतने सारे समुदाय में रहते हैं तो हम इतना उसको मूल्य देते नहीं हैं कि भाई। लेकिन जब मैं विदेश गया था तो मुझे 9 महीने तक किसी का दर्शन नहीं हुआ भक्त का। 9 महीने, 270 दिन, सोचो आप। तब मुझे समझ में आया कि जब हम, मैं वृंदावन में और धाम में जाता था यात्रा करने में, सब जगह भक्ति भक्त है, सब जगह हाथ में माला है, सब जगह हरे कृष्ण राधे राधे हो रहा है, उसमें से कितना कॉन्ट्रास्ट है, वहां पर कितना विरोधाभास है। तब समझ में हमको आता है, जब हम भक्तों के समुदाय से दूर चले जाते हैं तो आपको पता चलता है कि भक्त कितने वैल्यूएबल है। अगर भक्त आपके संग है, आपसे बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, वो अपने बर्थ पे सो रहा है, आप अपने बर्थ पे सो रहे हो, फिर भी वो संग जो है आपके लिए बहुत लाभकारी है। क्यों? जब भक्त साथ में होता है ना तो हमारे मन को भी हम रोकते हैं बुरे विचार से। जो अकेले ट्रेन में जा रहे हैं, कोई भक्त नहीं है, तो औरतें हैं, आदमी है, चमचमाहट सब जगह है, तो हमारा मन सबके बारे में सोचता है, सबके बारे में विचार मंथन करता है। यानी एक भक्त संग आपके यात्री में हो, एक संग में हो, तो आपका मन जो है ना बहुत काबू में रहता है कि मुझे नहीं, इनके साथ में बैठकर मुझे वो सोचना नहीं है, इधर देखना नहीं है, अगर ये बैठे साथ में तो। इसलिए कहा गया है, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले, कि सोने के समय भी एक भक्त का संग होना चाहिए, ताकि हमारे विचार जो स्वप्न में एकदम चले जाते हैं किसी और दुनिया में, जो दिन में दबा के रखे हैं, रात को खुल जाते हैं पूरे सारे भोग के स्वप्न रात को आते हैं, जो दिन में हमने मन को काबू में रखा है, नहीं हमको नहीं ऐसा करना है, 4 नियम पालन करने हैं, भक्तों के संग में रहना है, तो बहुत मन नियंत्रण में कोशिश करते हैं रखने की। लेकिन रात को तो एक बार निद्रा आ गए तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं फिर मन में 50 विचार आते हैं। लेकिन भक्तों का संग रहेगा तो उनके संग से वो भी नियंत्रण में रहता है कुछ हद तक, बहुत हद तक। हमारा जो मंदिर है, कभी कभी दुख होता है सुनकर कि इसको लोग अंग्रेजों का मंदिर के रूप में जानते हैं। मैं बार बार उनको कहता हूँ, अंग्रेजों का मंदिर नहीं है, सब भारतीय लोग वहाँ बैठकर अपना भजन कर रहे हैं, और विदेशी लोग प्रभावित होकर आ रहे हैं। सॉरी दुकान को है, मैंने माफ चाहता हूँ। विदेशी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनका जीवन परिवर्तन हो गया है, लेकिन उसके सबके मूल में एक तुम्हारे देश का व्यक्ति है। सोचिए आप, अभी तो ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे अंग्रेजों का मंदिर के रूप में जानते थे, फिर लोगों को बताना पड़ा कि नहीं, ये अमेरिका में प्रभुपाद पहले गए थे, बहुत सारे अमेरिकी लोग हैं। आज लगता है कि रशियन मंदिर है जहाँ देखो वहाँ रशियन, हाँ ऋषीय देश उसका नाम है, ऋषीय मतलब ऋषि मुनि उस देश में जाकर एकांत तपस्या करते थे बर्फीली जगह पर, तो उसका हो गया रशिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया मतलब अस्त्रालय, वहाँ पर अपने पांडवों का स्टोर हाउस था वेपन्स का, और वहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे अर्जुन वगैरह, तो अस्त्रालय का ऑस्ट्रेलिया हो गया। एनीवेज थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। ऐसे हर देश का एक इतिहास है और ऐसे आपको स्टोरीज मिलेंगे, क्योंकि सब ये भारतवर्ष था पहले। अभी देखिए प्रभुपाद जी यहाँ से मॉस्को चले गए, उस समय KGB नाम का एक भयंकर संस्था थी, अभी भी है लेकिन इतना एक्टिव नहीं है, जैसे CIA अमेरिका की है, गुप्तचर संगठन, खुफिया संस्था, वो सब पर नज़र रखती है। और तभी रशिया के अंदर किसी भी धर्म का कोई पालन करने का चांस नहीं था, चाहे क्रिश्चियन हो, धर्म कुछ भी हो, पालन करने का अधिकार नहीं है आपको, आप कोई भगवान को पूज ही नहीं सकते हैं, छुप छुप के करना पड़ता था लोगों को। उस समय पर एक दिन प्रभुपाद जी को मॉस्को जाना पड़ा, किसी कारण से हॉल्ट होगा शायद, और उनको कुछ समय वहाँ पर रहना था कुछ घंटों के लिए। तो श्याम सुंदर प्रभु ने उनको एक मॉस्को से उतर कर एक होटल में उनका इंतजाम किया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो कोई मिलने को है क्या, देखो मिल लेंगे, थोड़ा समय खाली है। एक रशियन व्यक्ति को श्याम सुंदर जी प्रभु लेके आए उनको, और एकांत रूप में, गुप्त रूप में होटल में कुछ समय के लिए चर्चा हुई कृष्ण के विषय में। उसके बाद में प्रभुपाद कभी भी रशिया में जा नहीं सके। उस एक व्यक्ति को जो कुछ क्षण संग मिला उसके वजह से आज रशिया में 40 मंदिर हैं, और यूक्रेन जैसे जहां पर कैदियों को रखते थे, क्योंकि तो इतनी ठंड है वहां पर -45 degrees कि वो ठंड में रखना ही एक तुम्हारी सजा है और कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां रखना बस, वहां रहो, दैट्स ऑल. ऑफकोर्स हीटर लगाते हैं, लेकिन ऐसे भयंकर देश में जहां पर किसी को एंट्री नहीं थी, यथावकाश उसके 50 देश बन गए, विघटन हो गया उसका, और पूरा हरे कृष्णा का रास्ता पूरा खुला हो गया, 40 मंदिर बने. आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उनके भागवतम क्लास में रोज 500 लोग रहते हैं एक मंदिर में, रोज नॉर्मल, कोई उत्सव नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, रोज के भागवतम में. और जब उत्सव होता है तो रशिया देश इतना बड़ा है कि एक तरफ से एक तरफ आने के लिए फ्लाइट में भी 12 घंटे लगते हैं, इतना बड़ा विशाल देश है वो. उसमें से लोग फ्लाइट पकड़ के उत्सव के दिन भागवतम में या उत्सव में आते, तो 15,000 लोग रहते हैं. आंकड़े सुनकर भी रोंगटे खड़े होते हैं कि इतना लोगों का, पूरा वीडियो देखा है मैंने, भोजन की व्यवस्था, स्टॉल है उधर, सत्संग है, कई प्रकार सत्संग चल रहे हैं, अनुवाद चल रहा है, कई अलग प्रकार के स्वामी जी आ रहे हैं, कई प्रकार के लोग आ रहे हैं, उनका सबकी रहने की खाने की व्यवस्था करना, बड़े मैदान में टेंट लगाया हुआ है उधर. मैंने देखा कि कितना सुंदर, इतना चमत्कार परिवर्तन हुआ है. क्यों हुआ था? एक व्यक्ति कुछ समय के लिए मॉस्को में प्रभुपाद जी को रशियन मिला था. यहां पर लिखा है, चैतन्य महाप्रभु बार बार दोहराते हैं अपने प्रचार में, अपने जीवन काल में, साधु संग साधु संग साधु सर्व सिद्धि होए, लव मात्र साधु संग सर्व, साधु संग सर्व शास्त्र कोए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. लव मात्र मतलब लव यानी एक सेकंड का 12वां हिस्सा होता है. उतना भी हम मन से साधु के संग में बैठेंगे तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा हम अंदाज नहीं लगा सकते, हमारे कल्पना के बाहर की चीज है. लेकिन सत्संग की जो व्याख्या है वो समझना बहुत जरूरी है. सत्संग किसको कह सकते हैं? अरे हम लोग दो चार भक्त लोग मिलकर उधर गए और चाट खा के आए, भक्तों के संग में खाया हमने भक्तों के संग में पिक्चर देखने गए, प्रभु जी हम लोग भक्तों के संग में थे, कोई किसी का बुरा संग नहीं करते हम. सत्संग की व्याख्या यह है कि सत्य विषय में जो संग होता है उसको सत्संग कहते हैं. सत्य यानी एक ही व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण, परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, जिस पर चिंतन करना चाहिए, वो सत्य के विषय में जब संग होता है तो सत्संग कहते हैं उसको. दूसरी एक व्याख्या है उसकी कि जिस संग में बैठकर आपको आपके जीवन की आज की जो स्थिति है उससे अधिक भगवान के विषय में प्रगति करने में प्रेरणा मिलती है. अगर आप बहुत प्रगत हो तो आपको उससे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. अब बहुत नौसिखिया हो तो आपको शुरू करने की प्रेरणा मिलती है. अगर आप बीच में हो तो आपको आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है. भगवान के विषय में ये दुनियादारी को थोड़ा और छोड़कर भगवान के विषय में थोड़ा अधिक प्रगति करने की जो प्रेरणा मिलती है वही सत्संग है. अगर किसी भक्त के संग में रहकर भी आपके हृदय में अगर ये कहता ना डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएंगे, बहुत उछल पछल पैदा हो जाएगी, तो भी सत्संग नहीं है. इसलिए सत्संग में भी सत्संग को ढूंढना बहुत जरूरी है. इतना दुर्लभ कहा, साधु लोग क्यों कहते हैं कि वो दुर्लभ है? क्योंकि आपको लगता है कि आप संग में हो, लेकिन हो सकता है कि दो भक्त मिलकर केवल दुनिया भर के गॉसिप कर सकते हैं, प्रजल्प कर सकते हैं, वृंदावन में क्या हो रहा है, कौन सा आश्रम में क्या हुआ, कौन सा बंद हो गया, कौन सा शुरू हो गया, कितने करोड़ का बना, ये लगेगा मैं वृंदावन की बातें कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, आपके भक्ति को प्रेरणा नहीं दे रही है. तो इन सारे भक्तों का संग जो अवेलेबल है, उपलब्ध है हमारे लिए, उसमें से वास्तविक संग करना और कैसे हमें प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, उसके ऊपर ध्यान रखना काफी कठिन है. क्योंकि वृंदावन धाम में जाइए, आप किसी भी धाम में जाइए, बंबई जाइए, ये भक्ति मार्ग के जितने भी संप्रदाय है उसके अंदर भी बहुत उथल पुथल चलते रहता है. ऐसे कहते हैं कि अगर किसी को माया में जाना ही है तो धाम सबसे बेस्ट है. क्यों? क्योंकि धाम में जितने कृष्ण प्रकाश प्रकट होते हैं उतनी ही शक्ति से माया प्रकट होती है. इसी धाम में कृष्ण भी थे, तब कंस भी इधर ही था, ये दूर नहीं था, इधर ही आते थे, अरिष्टासुर और केशी और पुतना, और कितना भेष बदल के तृणावर्त बन के तूफान आंधी पैदा करके भ्रम पैदा करे, लोगों को पूरा भ्रमित करके इधर ही थे वो सब लोग. दिन भर अशांति रहती थी यहां पर, कभी खेलने जा रहे तो कोई भयंकर राक्षस भूकंप के रूप में और तूफान के रूप में आ रहा है और पेड़ों के आलिंगन देके गोपियां का गर्भपात हो रहा है, लोग बेहोश हो रहे हैं, फिर कृष्ण आ रहे हैं, फिर उनको मार रहे हैं, फिर जय हो, फिर प्रसाद, फिर जमुना स्नान। देखिए आप ब्रज का जीवन भी कैसे। अगर वो कहते क्या भगवान आपके साथ में रह के क्या फायदा, दिन रात टेंशन बने रहते हैं, जब देखो टेंशन, जब देखो टेंशन, मैया हमेशा टेंशन में रहती है। गया मेरा बालक गऊ चराने के लिए, पता नहीं आज कौन आएगा। रोज कहानी शाम को सुनती है रिपोर्ट के रूप में कि आज हमारे कन्हैया ने इसको मारा, लेकिन कल तो मारा लेकिन आज क्या होगा। मेरा बालक तो बहुत नन्ना सा है, कोमल से ही उसके मक्खन जैसे मुलायम पैर है। अब सोचिए इसके बारे में। तो क्योंकि ग्वाल बाल और सब ब्रजवासी केवल कृष्ण चेतना में थे, कृष्ण भावना में थे, इसलिए उनको किधर भी माया का स्पर्श नहीं हुआ। शरीर से कष्ट हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन चेतना से कभी विचलित नहीं हुए। जिस कृष्ण के ही गलत नहीं, लेकिन उनके दृष्टि से जो अभी गलत सलाह दिया और बोला कि इनकी पूजा बदली करो, चेंज करो और इंद्र को छोड़ के अभी गोवर्धन की पूजा करो, पत्थर की पूजा करो, उन्होंने सुना उनका। और उसके बाद में क्या हुआ, इतनी भयंकर वर्षा हो गई कि जीवन तबाह होने का समय आया। तभी भी उन्होंने उनको नहीं कोसा, जिसके वजह से मतलब भाई दृष्टि से लग रहा है कि इनकी वजह से हुआ सब। पहले तो कभी हुआ नहीं था, हर साल इस साल इन्होंने चेंज किया इसलिए हुआ। फिर भी वो कृष्ण कृष्ण महाबाहो उन्हीं को पुकार रहे हैं। बाह्य दृष्टि से जिनके द्वारा ये सब आतंक हो रहा है, जिनके कारण हो रहा है, जिनके वजह से, जिनकी शायद गलती की उन्होंने हमको बदली करने के लिए कहा, फिर भी उनका कृष्ण भावना इतना गहरा है, इतनी गहरी है कि वो उन्हीं को पुकार रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, चले बोले संग, तो जा रहे हो। बोले अरे तुमने तो ये कहा तो ये हुआ, अभी बोल रहे कहाँ कहाँ ले जा रहे हो उनको आप। बोले चलो गोवर्धन के पास चलो, अभी क्या करोगे, अब मैं इसको उठाऊंगा। बोले हा 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 हा, तुम इसको उठाओगे इतना बड़ा पर्वत को। तो भगवान ने फिर उसको एक कदम का पेड़ था वहां पर, उसको ऐसा निचोड़ दिया अपने हाथ से, उधर अभी भी है वो पेड़, ऐठा कदम। हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ ठीक है फिर करो। फिर उनके आंखों के सामने उठा लिया उसको, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त जो है वो कृष्ण को ही अर्पण किया, अपना चित्त कृष्ण में ही रखा, बहिरअर्थ में नहीं रखा। यहाँ लिखा है बहिरअर्थ विभ्रमम, चित्त अगर भगवान कृष्ण को छोड़कर बाहर चला गया तो विभ्रमम निश्चित है आपका। चित्त अगर कृष्ण में है तो कोई चिंता की बात नहीं। वो ये सत्संग इतना प्रभावी है कि इसमें इतना परिवर्तन हो सकता है बिना कल्पना के। अभी वो वाल्मीकि मुनि थे, वो ऐसे ही हंटर थे, मतलब बहुत भयंकर रूप से प्राणियों की हत्या करते थे, बहुत मजा आता था उनको, इतने क्रूर थे वो। जब संत का संग हुआ, नारद मुनि का ना, संत का संग हुआ तो वो इतना महान संत बन गया, इतना महान संत बन गया कि रामायण लिखने का आदेश मिला उनको। रामायण लिखा उन्होंने, वो भी रामायण होने के पहले लिखा, जैसे कि स्क्रिप्ट लिखा, पटकथा लिखी, और प्रभु ने उनकी पटकथा के अनुसार सब लीला किया आगे। कितना महान पद मिला उनको, क्यों मिला, एक साधु के संग की वजह से। फिर वो मुर्गराड़ी था जो शिकारी था, वो भी जानवरों को आधा आधा मार के छोड़ता था। जब नारद मुनि अंगिरा मुनि का संग हुआ तो वो चीटियों को भी छोड़कर जा रहा है, ऐसे अजीब तरीके से अपनी ओर आ रहा है, उनकी ओर आ रहा है, कैसा नाच रहा है कूद रहा है ऐसा, इधर से इधर उधर आ रहा है। क्या हो गया, ऐसा क्यों आ रहे हो। नहीं रास्ते में वो चीटियां है ना, इसलिए वो उसको पैर रखने का। जो आदमी इतनी खूंखार तरीके से जानवर को मारता था, वो उनके संग के वजह से चीटियों को भी मारने का उसका मन नहीं हो रहा है। इतना परिवर्तन, आप सोचिए देखिए, इतना परिवर्तन हो रहा है। तो एक भक्त जो है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हमको बार बार विचार करना चाहिए। भगवान की दया से हमको बहुत सारे भक्तों का लगातार निरंतर प्रचुर मात्रा में संग मिल रहा है, ये उनकी असीम कृपा है हमारे पर। लेकिन अगर इसकी वजह से हमने उनके संग को अगर मूल्यवान नहीं समझा और छोड़ दिया, क्या कोई बात है ना, चलता है, दो क्या झगड़ा दो क्या हुआ, बहुत सारे हैं उधर ऐसा लगेगा, तो हम थोड़े से गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं कल कुशा माता जी के संग में था कुछ समय के लिए, तो मैं इतना कल भावना से एकदम विभोर हो गया था कि वो कह रहे थे कि मेरे पिताजी अंतिम अवस्था में थे, तो मैं हुवाई अमेरिका चली गई उनको थोड़ा सा अंतिम समय में थोड़ा सहायता करने के लिए। जिसको हमारे हॉस्पिस में हम लोग एंड ऑफ लाइफ केयर कहते हैं, हम मृत्यु के समय देने वाली आध्यात्मिक देखभाल कह सकते हैं आप उसको। लास्ट स्टेज में हम जो वातावरण उत्पन्न करते हैं ताकि वो कृष्ण की याद आए उसको और वो भगवत धाम चले जाएं भगवान के आदेश के अनुसार। तो वो चली गई अपने विदेश, अपने घर चली गई और 15-20 दिन अपने पिता के संग थी। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का सबसे उत्कृष्ट कृष्ण भावना का समय वो था जिसमें पिताजी के साथ में थी। उन्होंने अपने मरणासन्न पिताजी को सब कुछ समझाया कि देखो पिताजी, अभी शरीर आपका बदली होने वाला है, ये पुराना जाकर नया आएगा, नए देश में आप जाओगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, जो भी कष्ट आपको था वो सब खत्म हो जाएगा। मतलब वो गौलोक का वर्णन कर रही है उनकी भाषा में, ऐसा एक भूमि आपको जो इच्छा थी यहाँ पर, ऐसा एक फार्म हो जो सेल्फ सफिशिएंट हो, हाँ आत्मनिर्भर हो, वैसे वहाँ पर आपको पूरा देश मिलेगा जो आत्मनिर्भर है, जिसमें कोई किसी का डिपेंडेंस नहीं है, परावलंबन नहीं है, सब कुछ आनंद है वहाँ पर, मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। ऐसा वर्णन करते करते पापा का मन बहुत अच्छी तरह से तैयार किया। जब आखिरी समय आया, अभी ध्यान से सुनिए, जो आखिरी समय उनका आया तो वैसे बिस्तर में पड़े हैं लेकिन बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उसका हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारा मानो किसी से कुश्ती खेल रहे हैं या कोई उन पर आक्रमण कर रहा है, कोई उनको मार रहा है, ये भी उनको मार रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं लेकिन डर भी रहे हैं, क्योंकि वो लगता है कि आक्रमण जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये कमज़ोर पड़ रहे हैं। ऐसा बहुत प्रकार का संघर्ष उनके शरीर के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हो आपके पिताजी कुछ संघर्ष कर रहे हैं किसके साथ। तो ये तो भक्त हैं, तो इन्होंने जमुना का जल यहां से ले गई थी, वो निकाला और अपने पापा के मुख में दिया। जैसे ही अपने पापा के मुख में दिया वैसे एकदम से पीछे हो गए, मतलब अभी आक्रमण खत्म हो गया और वो रिलैक्स हो गए, ऐसे एकदम पीछे जाके बिस्तर में गिरे, छूट गया। वो इतने थके थे तो वो अवस्था में वो सो गए। जब उठे तो पहला उन्होंने बोला, वो मैजिक द्रव्य किधर है, वो जादुई जल किधर है, वो उनको पिलाओ। बोले पापा क्या हो गया? तो पापा ने पूरा वर्णन किया। चार लोग थे बहुत भयंकर दिखने वाले, इतने भयंकर कि देख के भी उनको पसीना और रट्टी पेशाब निकल जाए, और वो मुझ पर आक्रमण कर रहे थे, मुझे खींचने का प्रयास कर रहे थे, मैं संघर्ष कर रहा था, उतने में इतने बड़े डरावने संघर्ष में तो पसीना छूट रहा है, तो छाती की धड़कन बढ़ रही है और मैं पता नहीं पूरे जोरों के साथ, मेरा बल भी बहुत कम पड़ रहा है, वो इतने पावरफुल, इतने खूंखार दिखने वाले भयंकर लोग थे, उतने में मेरे मुंह में कुछ जल गिरा, वो जल गिरते ही वो भाग गए, चले गए वो। सोचो आप, मुझे दो पानी। वो तो फिर उन्होंने उनको समझाया कि वो चार लोग कौन थे जो हम लोग जानते हैं, और ये तुमको मैंने क्या दिया, ये देने से क्या हुआ, जिसके मुंह में मृत्यु के समय श्री जमुना जी का जल बिंदु पड़ता है वो यमराज और यमदूतों के भय से मुक्त हो जाता है। ऐसा वरदान स्वयं सूर्यदेव ने विश्राम घाट पे दिया था अपनी पत्नी को। उधर यम और यमी, मतलब यमराज और यमुना जी का मंदिर साथ में है, भाई बहन का, विश्राम घाट पे, जहाँ पर वीरादेव ने आदिवराह पुराण का वर्णन किया है, जहाँ पर कृष्ण ने कंस को मार के रेस्ट किया है, वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया है, जहाँ वरादेव ने भी रेस्ट किया है, उस जगह पर वरदान दिया था। तो अभी ये विदेश में एक व्यक्ति है जो बाह्य दृष्टि से भक्त भी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी लड़की भक्त है, वो इतने त्रायते महतो भयात स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निशीवणात। एक भक्त के संग में आने से कितने भयंकर डर से हम बच जाते हैं, कितने भयंकर संकट से हम बच जाते हैं, इसका हम कल्पना नहीं कर सकते। उनको क्या पता है यमदूत कौन है, उनको भले दिख रहा है वो सब, और भक्तों को सब पता है, वो जानकारी रखते हुए स्थिति को देखते हुए समय पर उसको जमुना जल दिया, और बाद में बड़े शांति से उनके पिता ने शरीर त्याग दिया एकदम आनंद से। मतलब उस समय जब चले गए तब कोई संघर्ष, कोई लड़ाई, कोई आक्रमण, कोई उसका अनुभव नहीं आया उनको, तो शांत चेहरे से चले गए। क्यों हुआ ये? क्योंकि एक भक्त के संपर्क में थे वो, चाहे पुत्री के रूप में थे, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, पति के रूप में, मित्र के रूप में, हाँ किसी भी रूप में। एक सही भक्त जो प्रामाणिक हो, ऐसा भी नहीं कि वो परम भक्त और परम शुद्ध और आचार्य होना चाहिए, एकदम परम शुद्ध संत होना चाहिए, लेकिन प्रामाणिक अगर सिंसियर भी हो वो, और सिंसियरली वो किसी को करुणावश बचाना चाहता है, वो भी आपके संग में हो तो भी आपके जीवन में अनंत परिवर्तन हो सकते हैं। और होते हुए हमने कई लोगों को देखा है अस्पताल में मरते हुए, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, उनको क्या क्या संग मिलता है और क्या क्या परिवर्तन होता है। बिल्कुल शराब से नशे में चूर भी व्यक्ति आए थे हॉस्पिटल में, उनको भी गंगा जल तुलसी और सब प्राप्त होता है। कितना भाग्य की बात है। इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों का। और फिर उन्होंने एक और एक कहानी बताई कि वो एक अमेरिकन आर्मी में एक आदमी था, बड़ा अधिकारी था, लेकिन वो डॉक्टर था। आर्मी में डॉक्टर होते हैं, नर्स भी डॉक्टर भी होते हैं। तो वो युद्ध नहीं खेलते लेकिन उनको गन चलाने आते, लेकिन वो अपने हॉस्पिटल में जख्मी नो वो जो सैनिक है उनका देखभाल करते रहते। तो वो व्यक्ति के हाथ में डॉक्टर के रूप में 400 लोगों ने शरीर छोड़ा। डॉक्टर था ना वो, तो उसके बहुत प्रेमी था, डॉक्टर था तो अपने मरीजों की बड़ी अच्छी सेवा करता था। तो 400 मरीज सैनिक सोल्जर्स उसके गोद में शरीर छोड़े थे, और उन्होंने हर मरते हुए सैनिक को एकदम डरावनी स्थिति में देखा था लास्ट स्टेज में। ये उसका एक कांस्टेंट फीचर था, मतलब नित्य रूप से मरने वाले के चेहरे पर बहुत भयंकर भय, ऐसा भयंकर पीड़ा और संघर्ष दिखाई पड़ता था। यथावकाश वो रिटायर हो गए और उनके भक्तों से मुलाकात हुई और वो प्रभुपाद जी को मिले, और उनके मन में ये कांस्टेंट प्रश्न था कि ये 400 लोगों का मैंने हर लोगों को करीब से देखा है कि इनके मरते समय कितना संघर्ष था उनके जीवन में, क्या प्रभुपाद जी इसका कारण क्या है। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूरा छठे स्कंद का जो वर्णन अजामिल का और पूरा यमदूतों का किया, तो उनको समझ में आया। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। तभी वो वृंदावन में उनकी मुलाकात प्रभुपाद से हुई थी। उन्होंने कहा कि जमुना के स्पर्श होने से सब यमदूत भाग जाते हैं। उस दिन से प्रभुपाद जी के उस छोटे से संघ की वजह से उनको इतनी श्रद्धा निर्माण हो गई, एक तो भक्त बन गए हरे कृष्ण, और इतनी श्रद्धा हो गई कि वो रोज वृंदावन की परिक्रमा देते थे, रोज जमुना जी में स्नान करते थे, और उनके हाथ में एक स्प्रे था, स्प्रे बड़ा एकदम ऐसा, उसमें जमुना जल लेके जाते थे और जो जो व्यक्ति मिलते थे उनको जमुना जी का स्प्रे करते थे उसके ऊपर पूरे परिक्रमा में, जो मिलेगा उस पर जमुना जी का स्प्रे, जो इस सब किसी पर यमदूत का आक्रमण नहीं होना चाहिए। उसको कुछ यमुना किनारा ऐसा कुछ उनको निकनेम भी लोगों ने दे दिया था कि ये आया मतलब ये जमुना का कुछ ऐसा उनका एक जो बोलते ना कनुआ बलुआ बोलते ना ऐसे निकनेम टोपन नाम वो उसको दे दिया था उसको। और फिर इधर ही वो 16 साल उन्होंने वो सेवा किया, परिक्रमा और जमुना स्प्रे और फिर यहीं पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। अभी आपके हमारे मंदिर के पास में ही यहाँ पर परिक्रमा रोड में आगे जाएंगे तो एक जगह है, उसका नाम है मदन टेर। आप में से कितने लोग गए उसमें मदन टेर? बहुत लोगों को पता नहीं, इतना सुंदर दिव्य स्थान वहाँ पर है। वो जगह जो है वहाँ पर उसको ऊंची ठौर कहते हैं, हाँ यानी ऊंची ठौर मतलब वो जरा ऊंची जगह थी, वहाँ पर जमुना जी बहुत ऊपर तक बहती थी, मतलब उसका निशान भी वहाँ पर है, उसके ऊपर बैठने की जगह थी। अभी तो जमुना जी तो बहुत पीछे चली गई, जो 30 साल पहले जब हम आए थे पहले तो जमुना जी इधर भी रास्ते में परिक्रमा रूप में आती थी, वहीं पर घाट बने हुए, केशी घाट, कालिया घाट और भ्रमर घाट और इमली तला और सब बने हुए हैं। एनी वेज तो उधर भगवान के बंसी के अवतार श्री हित हरिवंश वहाँ पर भगवान की इच्छा के अनुसार प्रकट हुए और वहाँ पर आए उसी जगह पर। अभी संत का एक जगह पर होना, कितने संतों का पुराण में उदाहरण है, जैसे जाजली मुनि समझिए, व्यास मुनि समझिए, नारद मुनि देखिए, जहाँ बैठेंगे ना वहाँ पर एक ऐसा वातावरण तैयार होगा जिसमें कोई हिंसा नहीं करेगा, कोई द्वेष नहीं करेगा, कोई किसी को दुख नहीं देगा, ऐसा एक शांति का और मित्रता का और सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण होगा। तो वैसे ही जैसे ही बंसी के अवतार वहाँ पर आए पुरुष रूप में और भजन करने लगे, तो एक्चुअली प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर हाथी और सिंह मित्र बने, शेर और हिरण मित्र बने, दुश्मन प्राणी मित्र बने, एक साथ रहकर वहाँ पर रहने लगे, एक प्रकार का द्वेष रहित, हाँ युद्ध रहित, ऐसा झगड़ा रहित वातावरण निर्माण होगा, पवित्र वातावरण केवल एक संत के होने से। तो वहां पर एक खूंखार डाकू था नरवाहन नाम का, वो बल से और बहुत क्रूरता से लोगों को लूटता था, और उसने बहुत सारी जमीन यहां से ब्रिज की हड़प ली थी, मतलब राजा बन गया था वो भूमि का इतना बड़े, अधिकतर वृंदावन उसके अंडर था, ये करीब 400-500 साल पहले की बात है। तो उसके कान पर एक खबर गई कि एक साधु आया है और उसकी जो कीर्ति है वो मुझसे अधिक हो गई है। मतलब वो कुख्यात है ना, वो मतलब इल फेमस है, वो कुख्यात है, गलत तरह से फेमस है, और साधु एकदम संत के रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो उसको वो सहन नहीं हुआ कि मेरे देश में, मेरी जमीन जहां पर है, यहां पर एक आदमी मुझसे अधिक प्रसिद्ध कैसे हो सकता है। तो बोला मैं खत्म कर दूंगा उसको। तो वो तलवार लेके, राज वस्त्र पहन के, राजा था ना वो डाकुओं का, राज वस्त्र पहन के घोड़े पर तलवार लेके बैठ गया और चलने लगा वृंदावन की ओर, जहां पर ये यमुना किनारे भजन कर रहे हैं। तो इनका प्रभाव इतना था कि उन्होंने सोचा, उनके मन में विचार आया कि मैं घोड़ा क्यों लूं, तो यकश्चित साधु है वो, मांग के खाने वाला है, उसको तो तलवार की क्या जरूरत है। तलवार फेंक दिया उसने, घोड़े को भी छोड़ दिया, मैं ऐसे जाऊंगा। जाने लगा तो जमुना जी की रेत जूते में घुसने लगे, तो जूता भी निकाल के फेंक दिया। और आगे गया तो बहुत गर्मी लगने लगी उसको, तो राजवस्त्र भी उतार दिया, पूरा मुकुट उतार दिया, लेकिन मन में द्वेष की अंगारा जल रही है। तो उसको पता नहीं चल रहा है वो क्या कर रहा है एक्चुअली, क्या क्या छोड़ रहा है। और जब जमुना किनारे उनके भजन कुटी, मतलब भजन की जगह तक पहुंच गया, तो केवल कुपिन बची थी उसके ऊपर। यानी कि क्या कि संत का, विरक्ति का प्रभाव वातावरण में भी फैला हुआ था, प्रभाव क्षेत्र, और वो अपने आप छोड़ रहा है सब कुछ, बाहर का सब छोड़ रहा है, अंदर का द्वेष अभी भी जागृत है। पहुंच गया, महाराज को देखा, घूर घूर के देख रहा है कि अभी दो मिनट में उसको खत्म कर देगा, मृत्यु दंड देगा उसको। तो महाराज क्या बोलते हैं, अरे नरवाहन, प्रभु निहार, मुझे क्यों देख रहा है, प्रभु को देखना। क्योंकि उस समय राधा वल्लभ जी उस बरगद के पेड़ के अंदर, पुराने जमाने में बड़े बड़े होल हुआ करते थे, गड्ढे कमरे जैसे, अभी भी कुछ ऐसे पेड़ है जिसके अंदर आप जा सकते हो, बैठ सकते हो, जप कर सकते हो। साधु लोग ऐसे पेड़ की जगह पर जाकर बैठ के जप करते थे। तो इनकी एक जगह पर पेड़ की, इतना बड़ा विशाल पेड़ था, अभी भी उसका एक लक्षणीय पेड़ वहां पर है, इतना बड़ा पेड़ था, उसमें तीन गड्ढे थे ऐसे अंदर पेड़ के। एक गड्ढे में रहते थे ये विश्राम करने के लिए, एक गड्ढे में राधा वल्लभ जी को रखा था, एक गड्ढे में राधा वल्लभ जी का श्रृंगार का सामान रखा था। पेड़ ही पूरा बिल्डिंग है उनका, सब कुछ उसके अंदर है। तो आते देखते घूर घूर के, कौन है ये, तो हरिवंश कौन है यहाँ पर। तो कहते मुझे क्यों घूर रहे हो, ठाकुर जी को घूरो। तो वो देखते कौन है ये, दूसरे किसी को बोल रहे हैं देखने के लिए। जैसे मुड़ के देखते हैं, कुछ ही क्षणों में उनका पूरा द्वेष, क्रोध, बदले की भावना, आग सब समाप्त होकर एकदम हृदय पिघल जाता है, और धाड़ करके साधु के हृदय में गिरते, महाराज क्षमा करना, मैं आपको मारने के लिए आया था, मुझे आपके चरणों में आश्रय दो। संत के संग में आए, उनकी एक सुंदर छोटी सी आज्ञा का पालन किया, तो इतने भयंकर खूंखार डाकू का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वहीं पर शरणागति को प्राप्त किया उसने चरणों में, और दीक्षा ले लिया उससे, और वहीं पर रहने लगा। दोबारा अपने डाकू के किंगडम में गया ही नहीं। वो लंबी कहानी, उसकी बहुत लंबी कहानी है। उसी जगह पर जो मदन है ना, कामदेव, वो भगवान को बाण मारने आए थे, पुष्प बाण। जब भगवान पर बाण ऐसा रोका तो चेहरे को देखा, तो चेहरे का सौंदर्य देख के वहां पर कामदेव रति के साथ पिघल गए। इतनी सुंदर जगह है, इतने पास में है। तो आज की कथा में क्या संबंधित चीज है कि संत के, जो सिद्ध संत होते हैं, उनके एक क्षण के संग से इतने बड़े भयंकर लोग भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। आज राधा वल्लभी संप्रदाय के इतिहास में नरवाहन को संत नरवाहन के रूप में उनकी कथा आती है, डाकू नरवाहन के रूप में कथा नहीं आती उनका। जैसे हमारे जगाई मदाई बार बार हम ड्रामा करते हैं, लेकिन प्रभु जी यहाँ बैठे हुए हैं, हर गौर पूर्णिमा में, हर नित्यानंद त्रयोदशी को वो तो ड्रामा होना ही चाहिए, परम ड्रामा है वो। एक है नरसिंह और प्रहलाद का, और एक है जगाई मदाई का, वो आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह सुन देखने में हर बार नया आनंद आता है उसमें। लेकिन आज की तारीख में उनको जगाई मदाई के रूप में नहीं जानते हैं प्रभु जी, आज उनको माधवानंद गोस्वामी और जगदानंद गोस्वामी के रूप में जानते हैं। एक नित्यानंद प्रभु के कृपा से और संग से क्या परिवर्तन हो गया उनके अंदर। तो इतने खूंखार, जिनके पापों का घड़ा इतना भयंकर है कि यमराज भी बेहोश हो गए थे उनका रिकॉर्ड रखते रखते। यमराज जी को जब पता चला कि ये उद्धार हो गया इनका, तो उनको विश्वास नहीं हुआ, मतलब मेरे को आंखों से देखना है। गधे पर बैठ के जा रहे हैं, गधे को इतना दौड़ाया जोर से उन्होंने कि गधा बेचारा, उसके गधा नहीं, क्या बोलते उसको, भैंसा जो उनका वाहन है ना, उसको इतनी जोर से भगाया कि मुझे अब भी देखना है, तो उसके मुंह में झाग आया और बेहोश हो गया बेचारा। तो उसने अपना वाहन छोड़ दिया, अपना गाड़ी वाला पंक्चर हो गया, छोड़ो इसको। उधर से ब्रह्मा जी आ रहे थे हंस पे बैठकर, बोला आ जाओ मेरे गाड़ी में आ जाओ। तो हंस के वाहन पर बैठ गए और ब्रह्मा जी से पूछना आरम्भ किया, ब्रह्मा जी क्या हो बताओ। ब्रह्मा जी ने बैठे बैठे इस सफर में बताया, तो ब्रह्मा जी के वाहन पर बेहोश हो गए वो, इतनी कृपा, विश्वास नहीं हो रहा है, बेहोश हो गए। जब उनको बोला गया यमराज जी महाराज उठो अभी पृथ्वी आ गई है, आखिरी स्टेशन आ गया, देखो अभी सामने दिख रहा है, तो जग गए। देखा आंखों से अश्रु आए उनके, यमराज के यकीन नहीं हुआ कि जिनका पापों का रिकॉर्ड रखने के लिए यमलोक में जगह नहीं थी, जमीन में गड्ढे गड्ढे खोद कर इनका रिकॉर्ड दिया गया था, यमदूत सारे एग्जॉस्ट हो गए थे। हाँ बोलते हैं हमारा इतना ड्यूटी मत दो हमको, दिन रात इनके पापों का रिकॉर्ड करते करते हम थक गए अभी, सब लोग परेशान। चलो ये तो रिकॉर्ड रखना मुश्किल बात है, लेकिन ये रिकॉर्ड को फल भी देना है बाद में। ये रिकॉर्ड एक एक गिन गिन के उसका दंड भी देना है, कितना बड़ा काम है। वो भी केवल दो लोगों का, दुनिया में केवल दो लोग है क्या, इतने सारे पापी लोग हैं, उनका भी काम करना है, इनका भी काम करना है। ऐसे परेशानी में थे वो, इतने भयंकर लोग, मतलब ये चैतन्य भागवत में इसका विस्तार में वर्णन आता है कि कितने महान भयंकर पापी थे वो, जिनका रिकॉर्ड देखकर भी यमराज भी हिल गए थे एक बार। उनको एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त, भगवान के अवतार है वो, लेकिन भक्त रूप में आए, उनकी एक क्षण का संग हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, संत बन गए वो। बात बात पर खून करने वाले लोग हैं ना, तो लोग उनको पत्थर मार रहे हैं, तो बोले और मारो ये लोग पत्थर, दूसरा मारो, मैंने इतना पाप किया है आपके खिलाफ, ये पत्थर तो कुछ भी नहीं, आप मारो हमको, जो चाहिए करो। महाप्रभु जी को उन्होंने पूछा इतना परिवर्तन, महाप्रभु जी को पूछा हम लोग इतने पापी है महाप्रभु जी, क्या कर रहे हैं उसके लिए, इतना लोगों का, हर एक व्यक्ति नवद्वीप में हमने उनका अपराध किया है। तो बोले इधर घाट पे जमुना जी के खड़े रहो, जो भी स्नान के लिए आते हैं ना सबके कपड़े धो, घड़ी करके दे दो, कपड़ा धो के दे दो, उनके चरणों को दबाओ, उनकी स्तुति करो, वो आपको गाली देंगे फिर भी उनकी स्तुति करो, उनकी सेवा करो, उनके कपड़े को धो लो। जीवन भर किया मधाई ने वो काम, इतना परिवर्तन। तो बात बात पर लोगों को काटने वाले लोग थे, बात बात पर अभी गौरांग महाप्रभु का और कृष्ण का नाम लेकर माफ़ी मांग रहे हैं, प्लीज़ हमको माफ़ करो, क्षमा करो, हमको बड़े पापी हैं हम लोग। इतना परिवर्तन अगर इतने खूंखार लोगों को हो सकता है, तो हम तो इतने खून खराबे वाले, बलात्कार वाले, डकैती वाले और चोर और ये व्यभिचारी तो नहीं, हम लोग ने छोड़ दिया अभी थोड़ा सा समय के लिए पहले है ना। थोड़ा सा समय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अनंत जन्मों का, इतना लाखों सालों का हिसाब किताब में सब कुछ करते आए हैं जानवर के जीवन में, सब जन्म, अभी केवल कुछ 30-35 साल हो गए इसमें छोड़ दिया है। तो बोले 30-35 साल से हम चाय तक नहीं पीते। ऐसा लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही तुच्छ समय है जितने में हमने ये छोड़ दिया है, पता नहीं कल भी वापस पकड़ ले उसको। तो अगर हम प्रयास कर रहे हैं, हम थोड़े प्रामाणिक भी हैं, थोड़ा जप भी कर लेते हैं, भगवान के सेवा भी कर लेते हैं, शास्त्र थोड़ा पढ़ लेते हैं, सुनते भी हैं, तो अगर हम अगर ऐसे भक्तों का इस भावना से संग करेंगे तो हमारे अंदर कितना परिवर्तन आएगा। जो इतना पापी है उसके अंदर इतना भयंकर परिवर्तन आ सकता है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने का, भगवान देख रहे हैं हमारा प्रयास, प्रयास तो कम से कम प्राणायिक प्रामाणिक है, हम लोग एकदम बड़े भक्त नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम कोशिश तो सच्चे दिल से कर रहे हैं। और ऐसे अवस्था में अगर हम साधना का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम सत्संग ठीक से करेंगे, तो हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, हमारे बल से नहीं, वो संत की कृपा से, वो भक्त की कृपा से। हम उनके पास गए, ये हमारी महानता नहीं है, वो हमारे पास आए, हमने उन्हें हमका संग दिया, उनका संग मिला। और सबसे बड़ा संत का संग होता है एक तो श्रवण का, जिसके मुंह से हम सुन रहे हैं, उससे भी बड़ा संग होता है संत का उसकी वाणी का, और उसकी वाणी को पालन करने का। आज प्रभुपाद जी नहीं रहे, हम लोग ने उनका दर्शन भी नहीं किया है, लेकिन प्रभुपाद जी की किताब पढ़कर और प्रभुपाद जी की आज्ञाओं को पालन करके हम प्रभुपाद जी का नित्य रूप में संघ का अनुभव करते हैं कि प्रभुपाद जी हमारे साथ में हैं, प्रभुपाद जी के शिष्यों के रूप में वो साथ में हैं, प्रभुपाद जी के लेखन के रूप में हमारे वो साथ में हैं, उनकी वाणी, उनके जो आदेश उन्होंने दिए थे उनके पालन करने की क्रिया से हम उनका संघ का अनुभव करते हैं। हमारे गुरुदेव भी हमारे साथ में 24 घंटा 12 महीने नहीं रहते हैं, दुनिया भर में प्रवास यात्रा करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनका संग हर क्षण कर सकते हैं अगर उनकी दी हुई आज्ञा, जो हम जब भी हम उनको मिले थे तब दिया था या उनके क्लास में सुना था, वो आज्ञा उनका पालन करेंगे तो हर क्षण गुरुजी आपके साथ में है। प्रभुपाद जी भी अकेले विदेश में घूमते थे, एक साल तक उनको कोई संग कोई हेल्प कुछ मिला नहीं उनको, लेकिन वो कहते थे कि मैं कभी भी अकेला नहीं था, मेरे गुरुजी हर क्षण मेरे संग में थे। किस रूप में थे? क्योंकि मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए इतना दूर आया था, उसके आज्ञा के पालन में जो एक वाक्यता थी, जो जो एक चित्त था उनका मन, उसकी वजह से प्रभुपाद जी के गुरु का संग प्रभुपाद जी को नित्य रूप में होता रहा। इसलिए हम हर सवेरे प्रार्थना में क्या बोलते हैं, गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्या, आर न कोरी हो मोने आशा। ये हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन के यश का रहस्य है। केवल सुबह के एक रीति के विषय हम लोग आने रहे, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाक्य हम रोज गा रहे हैं, क्योंकि इनका वाक्य अगर हमने हृदय में ले लिया और उसमें एक चित्त हो गए, हम लोग एक वाक्य हो गए, उसके सिवा मन में कुछ विचार नहीं आ रहे हैं। जैसे प्रभुपाद का जीवन भर एक ही विचार था, कैसे मेरे गुरु जी का आज्ञा पालन करूं, मैं कैसे उनकी आज्ञा का पालन करूं। नए नए ग्रस्त से लेकर बुढ़ापे तक उनके मन में 35 साल तक एक ही विचार था, गुरुमुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया, एक मन में एक एक वाक्यता उसमें होनी चाहिए और दूसरा कोई विचार मन में नहीं आना चाहिए। ये जब भी होगा तो हमारे जीवन में भी बहुत अति अकल्पनीय परिवर्तन आ सकता है, और अनजाने में न जानते हुए कभी अपेक्षा न करते हुए भी आप अपने आप को एक दिन गौलोक वृंदावन में प्राप्त करेंगे। इसी का रहस्य है ये सत्संग। भगवान ने क्यों दिया है? भगवान ने एक बोट भेजा है इस भयंकर भव सागर में, एक भगवान ने बोट भेजा आपके लिए, इतने तूफान में एक बोट भेजा है। जैसे प्रलय काल में मत्स्य अवतार हुआ और उन्होंने बोट के रूप में सबको भक्तों को बचाया, वेदों को भी बचाया, वैसे भगवान ने परमानेंटली एक बोट सबके लिए भेजा है। उसके अंदर बैठ जाओ खाली, बस कुछ सोचो मत बाहर क्या हो रहा है, पानी अंदर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, बदन पे पानी आएगा, खाली बोट में बैठे रहो, बस सत्संग के बोट में बैठे रहो, वो बोट आपको बराबर पार लगाएगी। लेकिन बीच में कोई वड़ा पाव और कुछ समोसा खाने के लिए उतरना मत बीच में मतलब कोई प्रलोभन के लिए मत जाना बीच में, एक रास्ते पर चलना। ये रास्ता इतना सुंदर है कि ये सत्संग का रास्ता इतना सुंदर इतना प्रभावी है कि हम सब लोगों को अनगिनत लोगों को ये भगवत धाम पहुंचा सकता है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो ए भव सिंदुरे, निशक्ति है उसके अंदर। इसलिए आइए मैं आप सब मिलकर ये प्रार्थना करें कि हम चेतना से भगवान से प्रार्थना करें भावना के स्तर पर कि हमें सत्संग का मोल हमेशा मन में बना रहे, उसका मूल्य क्या है, और हम हमेशा सत्संग को गंभीरता में ले लें। जब भक्त को मिलेंगे तो यहाँ वहाँ की बेफजूल की बातें नहीं करेंगे, कृष्ण के विषय में बात करेंगे। बहुत कम समय रहता है भक्तों के बीच में, हर समय भक्तों का संग नहीं मिलता है। तो हम आइए प्रार्थना करें भगवान से कि हमारे जीवन में आज से आगे जो भी संग आएगा उसको हम बड़े गंभीरता से लेंगे, हृदय से लेंगे, उसको चिंतन करेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे और उसी को जीवन बनाएंगे। जो सुन रहे हैं अच्छे भक्तों के मुख से, संतों के मुख से, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ रहे हैं, ये सब हमारे लिए एक दिव्य संग है। एक व्यक्ति जाने के बाद भी उसका संग प्राप्त हो रहा है, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो समय धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।